शेष है आज के मुख्य समाचार ऋषारी जैन के साथ। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यूक्रेन में अपने दूतावास से वापस बुलाए अधिकारी। दिल्ली में कल महीनों बाद खुलेंगे स्कूल। और जॉश हेजलवुड ने विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में शामिल होने के लिए पाया $1.44 मिलियन का। और अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्यू में अपने दूतावास के सभी स्टाफ को निर्देश जारी किए हैं कि दूतावास का कार्य अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सभी स्टाफ को वहां से निकलने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री मैरी स्पेन का कहना है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर एकत्र होते रूसी सैनिकों को देखते हुए यूक्रेन में अब सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि सरकार बीती दिसंबर से ऑस्ट्रेलियाइयों को यूक्रेन से निकलने की सलाह दे
We have three remaining staff and they have been instructed now to move as other Five Eye countries are to Lviv. And you would have seen the announcement from the United States as well and Canada. And that is the next stage in Australians being moved to safety. I want to thank particularly those three Australian based staff who have been there supporting in a consular way the many Australians, many of whom are joint citizens, dual citizens, who are in Ukraine. But the situation, as you are all hearing as well, is deteriorating and is reaching a very dangerous stage.
इटली ने भी अपने नागरिकों को जल्द अज जल्द यूक्रेन से निकलने के निर्देश दिए हैं, हालांकि वे अपना दूतावास नहीं बंद कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स की बीगल सीट से लेबर पार्टी जीतती नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन सरकार राज्य में और भी छोटी बहुमत की हो जाएगी। बीगा, मोनारो, स्ट्रैथफील्ड और विलोबी के मतदाताओं ने पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लियन के आकस्मिक इस्तीफे के 4 महीने बाद अब नए प्रतिनिधि चुने हैं। लिबरल पार्टी हर कीमत पर विलोबी की सीट बचाने को आतुर है और वहीं नेशनल्स मोनरो की सीट अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। स्ट्रैथफील्ड में लेबर के जेसन येत्सेन ली छोटी ही सही लेकिन बढ़त पर है। उन्होंने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया है।
It is not okay that I and the Labor volunteers were subject to racist comments from opponents at polling booths whispered into the ears of voters.
वहीं कोरोना परिस्थिति की बात करें तो विक्टोरिया में आज 18 कोरोना संबंधी मृत्यु और 7,223 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य में अस्पताल अब गैर जरूरी चिकित्सा देने की भी तैयारी कर रहे हैं। राज्य में 181 कोरोना मरीज गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। अस्पताल भर्तियां जनवरी के माह से आधी होने के बाद अब राज्य सरकार कोड ब्राउन हटाने की दिशा में बढ़ रही है। वहीं न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि राज्य में 1,614 कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 93 गहन चिकित्सा केंद्र में हैं। राज्य में 22 कोरोना संबंधी मृत्यु और 6,686 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। लेबर सांसद क्रिस्टीना किनियली का कहना है कि प्रधानमंत्री अनिवार्य टीका नियमों के विरोध प्रदर्शनकारियों से वोट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को प्रदर्शनकारियों का बड़ा समूह संसद पहुंच गया था, जिससे आसपास की सारी सड़कें बाधित हो गई थी और पुलिस भी हाई अलर्ट पर रही। श्री मॉरिसन का कहना है कि वे हजारों प्रदर्शनकारियों की चिंताएं समझते हैं और यह है कि अनिवार्य टीका नियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए हैं। सांसद कीनियली ने एबीसी से कहा कि सुरक्षा के इतने कड़े नियम दर्शाते हैं कि वहां हिंसा की संभावना थी, फिर भी श्री मॉरिसन इस कृत की निंदा न कर सके।
It is not okay that I and the Labor volunteers were subject to racist comments from opponents at polling booths whispered into the ears of voters.
हीलिंग फाउंडेशन ने स्टोलन जेनरेशंस के उत्तरजीवियों, उनके परिवारों और समुदायों की ओर अपना आदर और आभार व्यक्त किया है। 14 साल पहले आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने संसद में स्टोलन जेनरेशंस के सदस्यों से क्षमा याचना की थी। हीलिंग फाउंडेशन की मुख्य सचिव फियोना कॉनवर्थ कहती हैं कि इस क्षमा याचना ने समुदायों के दर्द को पहचाना था।
It meant so much. It, to the healing journeys. In particular, of those who have suffered and continue to suffer, that enduring grief, loss, and trauma.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूजीलैंड में जहां एक तरफ कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं अनिवार्य कोरोना नियमों के खिलाफ संसद के बाहर चल रहा प्रदर्शन अपने चौथे दिन पर है। 3 हफ्ते पहले देश में पहला स्थानीय ओमिक्रॉन संक्रमण दर्ज किया गया था और शुक्रवार को दर्ज 446 मामले देश के लिए संक्रमण का नया रिकॉर्ड थे। वेलिंगटन में 120 प्रदर्शनकारी सरकार की कोरोना योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जब स्पीकर ट्रेवर मलार्ड के उन्हें संसद से जाने के आदेश देने के बाद ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बाद श्री मलार्ड ने संसद के स्प्रिंकलर चलवाकर प्रदर्शनकारियों को भिगो दिया और टीकाकरण संदेशों के साथ बैरी मैनिलो का संगीत बजाया गया। विरोधियों ने भी अपना संगीत बजाते हुए ट्विस्टेड सिस्टर का गीत वी आर नॉट गोना टेक इट बजाया। और अब खबरें भारत से। दिल्ली में सोमवार से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। स्कूलों ने छात्रों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है, हालांकि अब भी कुछ अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर आशंकित हैं। कोविड-19 के कारण राजधानी में लंबे समय तक बंद रहने के बाद अब चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जा रहा है। जहाँ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल सोमवार यानी 7 फरवरी से खोल दिए गए हैं, वहीं 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक बच्चे स्कूल लौट सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में नर्मदा घाटी परियोजना की टनल में हुए हादसे में दबे हुए मजदूरों में से 7 को बाहर निकाल लिया गया है। कटनी के कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने बताया कि जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि शनिवार को टनल का एक हिस्सा धंस गया था, जिसमें 9 मजदूर दब गए थे। स्लीमनाबाद इलाके के NH-30 के नीचे से होते हुए ये टनल निकली थी, जिसमें दुर्घटना हुई। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को एक खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.77 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जॉश हेजलवुड को विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने $1.44 मिलियन के अनुबंध कर अपने खेमे में शामिल कर लिया। तेज गेंदबाज हेजलवुड, पैट कमिंस, मिच मार्श और डेविड वार्नर वे 4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रहे जिन्हें ऑक्शन के पहले दिन 1 मिलियन से अधिक के अनुबंध मिले। पर चौंकाने वाली बात यह रही कि स्टीव स्मिथ के लिए किसी टीम ने भी दावेदारी नहीं पेश की। स्मिथ के अलावा मैथ्यू वेड और एडम जैम्पा भी किसी टीम को आकर्षित करने में नाकाम रहे। और अंत में एक नजर कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, यहाँ अधिकतम तापमान 36 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में अधिकांश रूप से धूप ही धूप खिली रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल धूप ही धूप है, यहाँ अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल तेज धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, यहाँ अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बरसात की आशंका है, यहाँ अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका है, अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप ही धूप है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।